के गुणों के ज्ञान भगवान अभी तक जो प्रकरण कर रहा था 147 गुणों के माध्यम से कर्म से संन्यास लेने की बात कही गई थी और 148 गुणों के माध्यम से कर्म फल से संन्यास लेने की बात कही गई थी। अब कर्म चेतना और कर्म फल चेतना के निषेध के बाद ज्ञान चेतना की बात करते हैं। कर्म और कर्म फल में भोक्ता कर्ता कर्म संबंध और भोक्ता भोग संबंध बनता है। यदि हम कर्म चेतना और कर्म फल चेतना को महत्व देते हैं तो उसका अर्थ है कि आत्मा पर को पर का कर्ता है और आत्मा पर का भोक्ता है। इन दोनों चेतनाओं का निषेध करके और निषेध इस लेवल पर करके कि इनकी भावना को नचाओ, बार 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 और मूल में भी मूल किताब को भी हाथ में लेकर नहीं रखते हो तो देखो मूल में भी पूरा ये सब एक एक सब लिखे हुए हैं। वो 148 बार का भी लिखा हुआ है और वहां पर 147 बार भी लिखा हुआ है कि इस तरह ये मैं नहीं हूं, इसका कर्ता मैं नहीं हूं, भोक्ता नहीं हूं, इस तरह से। अब सवाल ये उठता है कि फिर आत्मा का पर के साथ कुछ संबंध रह जाता है क्या, है कि नहीं है? कि न आत्मा उनका कर्ता है न उनका भोक्ता है। तो कहते हैं कि पर को जानता है, इससे ज्ञाता के ये संबंध है और ज्ञाता के ये संबंध है, सिर्फ ज्ञाता के ये संबंध ही है, मतलब वो आत्मा पर को मात्र जानता ही है और पर के साथ में आत्मा का कोई भी संबंध नहीं है। इसके संबंध में कल अपन ने विस्तार से ये बात स्पष्ट की थी कि हमने ज्ञान स्वभाव और ज्ञेय स्वभाव को हम जाने कि जो ज्ञान पर में को जानता है तो प्योर ज्ञान की संपत्ति है, वो ज्ञान का स्वभाव है, उसमें ज्ञेय ने कुछ भी नहीं किया। और ज्ञेय यदि ज्ञान में जानने में आते हैं तो उसमें ज्ञान ने कुछ नहीं किया, उन ज्ञेयों का वो स्वभाव है। जैसे नाई अपने बाल बनाता है तो दोनों जने सक्रिय हैं उसमें, वो बना रहा है और हम बनवा रहे हैं। मैंने ऐसे हम तो सोते सोते तो नहीं बनवा सकते ना, लेकिन मान लो उसमें दो पार्टनर हैं, उसमें एक एक्टिव और एक पैसिव। तो ऐसे ही ज्ञान और ज्ञेय, तो ये समझता है कि ज्ञेय तो बेचारे पड़े हैं और ज्ञान एक्टिव होकर के उन्हें जान रहा है। अब कोई कहता कि नहीं नहीं, वो ज्ञान तो अपने में शांत अपने में बैठा है और ज्ञेय आकर के एक्टिव होकर के उसमें पा रहे हैं। तो बता रहे कि ऐसा ज्ञाता ज्ञेय संबंध में ऐसा रंज मात्र भी नहीं है। जैसे कर्ता कर्म में है ना, तो कर्ता है एक्टिव और कर्म है पैसिव, माने कर्ता सक्रिय है और कर्म जिसको किया जा रहा है वो एक तरह से जैसे मिट्टी को कुमार रौंद रहा है, तो मिट्टी रौंद रही है और कुमार रौंद रहा है, तो एक हो गया सक्रिय और एक हो गया निष्क्रिय पार्टनर। तो ऐसा ज्ञाता और ज्ञेय संबंध नहीं है। अब इस बात को समझाने के लिए जो अगली गाथाएं हैं, कितनी गाथाएं हैं, 390 से लेकर 404 तक, 390 से लेकर 404 तक, मैंने 15 गाथाएं हुई। तो इन 15 गाथाओं में ये बात बता रहे हैं और उसके पहले वैसे एक ये कलश है जो इन गाथाओं की उत्थानिका का कलश है। बाकी के जो कलश थे वो तो सब पुरानी जो गाथाएं थी वो 3 गाथाएं, 4 और 3 उनके ऊपर थे और 147 पर भी वे कलश बीच बीच में आए थे और फिर 148 में उन्होंने बताई थी उनमें आए थे बीच में, और जिनमें वो बार बार आता था ना कि मैं तो अपने में बस लीन हूं, मैं तो अपने में लीन हूं और मैं निष्कर्म, मैं तो अपने निष्कर्म आत्मा में लीन हूं। अब ये कलश जो है ये पढ़ो शांति जी, ये तहा प्रदास कर, समझिए कौन सा कह रहा हूं कलश, 234 अपने में ही मगन है अचल अनाकुल ज्ञान, अपने में अचल है अनाकुल है, इसको करके जानने में किसी भी प्रकार की आकुलता नहीं होती है, और ये करके जानने में इसकी अचलता में कोई कमी नहीं आती है। ये चल जाता हो, अपने से हट जाता हो, इसमें कुछ स्वभाव में फर्क पड़ जाता हो, इसकी पोजीशन में कुछ फर्क पड़ जाता हो, ऐसा कुछ नहीं होता है। और यद्यपि जाने गे को, गे पदार्थों को जानता है, तदपि भिन्न ही जान, तो भी उनसे भिन्न ही रहता है। और ये सेंटर आइडिया है अगली गाथाओं का। अब ये 15 गाथाएं हैं, अब ये और इनकी आत्मख्याति टीका अपन इतना ही पढ़ेंगे, इसमें सब बात बहुत अच्छी तरह से स्पष्ट हो जाती है, कुछ रह नहीं जाती है। फिर जरूरत पड़ेगी थोड़ी बहुत बनासी दास वगैरह के छंदों की, तो फिर देखेंगे बाद में। पढ़ो गाथाएं और गाथाओं की बात करें सब जान लाए।
Yeah. Yeah.
अब देखो गंभीर तरह से आपने इसके अर्थ पर ध्यान दिया हो तो एक तरफ तो ज्ञान को खड़ा किया और एक तरफ सारे गेय पदार्थों को। अब गेय तो अनंत पदार्थ हैं, तो उन्होंने उन गेयों को लिया है जो मुख्य रूप से निरंतर हमारे ज्ञान के गेय बनते हैं, जिनकी चर्चा हम निरंतर करते हैं और जिनको धोखे से ज्ञान समझ लिया जा सकता है। तो उन्होंने क्या किया कि सबसे पहले तो शास्त्र को लिया। ये शास्त्र माने ये किताबें, ये लिखी हुई जो किताबें हैं, ये ज्ञान नहीं है क्योंकि ये कुछ जानती नहीं है, और जानती नहीं है इसलिए ज्ञान नहीं है, जो जानेगा वो ज्ञान होगी। इसलिए भगवान कहते हैं कि शास्त्र अलग है और ज्ञान अलग है। बस अब एक गाथा हुई है, अब एक गाथा में आगे आगे एक एक शब्द बदला है। पहले शास्त्र, फिर शब्द, फिर रूप, फिर वर्ण, फिर गंध, ऐसे एक एक शब्द बदला है। और वो एक एक शब्द एक एक गाथा में चार दफे बदला है ना। शास्त्र ज्ञान नहीं है क्योंकि शास्त्र कुछ जाने नहीं, तो फिर दूसरी दफे शास्त्र आ गया, और इसलिए ज्ञान अन्य है और शास्त्र अन्य है। मतलब इस तरह से बिल्कुल एक स्टाइल में गाथाएं बदल गई, इतनी गाथाएं बन गई। और बाकी का गाथा का कंस्ट्रक्शन मतलब रचना बिल्कुल एक सी है, पर एक वाक्यावली उन्हें नक्की कर दी कि ये चीज रूमाल ज्ञान नहीं है क्योंकि रूमाल को जानता नहीं है, इसलिए रूमाल अन्न है और ज्ञान अन्न है, ऐसा जिनेन्द्र भगवान कहते हैं। एक बात आ जाए ना, आप किसी चीज पे लगा दो, रूमाल पे लगा दो, इस कपड़े पे इस पे लगा दो, इस पे लगा दो, कुछ भी लगा दो, लाखों गाथाएं आप बना सकते हो। जो गेय पदार्थ हैं उन गेय पदार्थों में को एक ज्ञान माने आत्मा ज्ञान से भी भिन्न है और गेय अलग है। तो एक तो ये हुआ कि आप हजारों गाथाएं कैसे बना सकती हैं ज्ञान और गेय के संबंध में, और इन गाथाओं का कंस्ट्रक्शन कैसा है, जिस प्रकार प्राकृत में है ठीक वैसा ही अपन ने हिंदी में बिल्कुल उसी स्टाइल में उसी प्रकार की शब्दावली से वो अपन ने बनाई। अब इन्होंने कहोगे 15 जो चीजें ली उनमें से उन्होंने सिलेक्शन कैसे किया, यदि वो हमारा क्रम ख्याल में आ जाए तो अभी हमको फिर वो भी देखने की जरूरत नहीं पड़े। तो जैसे पहले तरफ उन्होंने शास्त्र लिया, फिर उन्होंने 5 इंद्रियों के विषय लिए, तो फिर दूसरा शब्द लिया तो ये कर्ण इंद्रिय का विषय है, और तीसरा रूप लिया, और चौथा वर्ण लिया। देखो रूप और वर्ण में क्या अंतर है ये आप समझो। रूप तो चारों को बोलते हैं, कौन, स्पर्श, रस, गंध और वर्ण, इन चारों को मिलाकर एक नाम क्या है, रूप। रूपना पुद्गला, तो पुद्गल रूपी है, रूपी है माने उसमें स्पर्श, रस, गंध और वर्ण चार। हम रूप और वर्ण को एक ही अर्थ में समझते हैं, अपन मानते हैं ना ये सफेद रूप है इसका, और सफेद रंग है, रंग माने वर्ण, तो वर्ण को और रूप को हम एक समझते हैं। तो पहली बात तो ये समझ लो कि वो एक नहीं है। अब उन्होंने एक पहला एक गाथा ली रूप की, और फिर रूप क्योंकि चार चीजें होती हैं उसमें, कौन कौन, स्पर्श, रस, गंध और वर्ण, तो फिर रूप के बाद उन्होंने वर्ण लिया, फिर रस लिया, फिर गंध ली, फिर स्पर्श ली, जिस भी क्रम से ली, लेकिन रूप से गंध स्पर्श ली, मेरा कहने का मतलब स्पर्श रस गंध वर्ण लिए और एक रूप लिया, तो 5 तो ये बन गई, एक शब्द की बन गई थी, शब्द में नहीं हूं। फिर उन्होंने शुरू किया तो एक तरह से पुद्गल निपट गया, और फिर उन्होंने धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, फिर आकाश द्रव्य, फिर काल द्रव्य, फिर ये सब लिए। मतलब आप कुछ नहीं ध्यान से देखते जाते, और एक दफे ध्यान से देख लो उनका क्रम, और वो क्रम हमारे ख्याल में आ जाए, शब्द तो हमें आते ही है ना, वो ख्याल में आ जाए तो 15 गाथाएं का क्या है वो बिल्कुल एक वाक्य में हम बना सकते हैं और आगे इसमें बना के बताया भी है। अब इसको एक वाक्य कैसे बना सकते हैं कि हम अंदरों को एक साथ बोल दें कि आत्मा शब्द नहीं है, सांस नहीं है, शब्द नहीं है, रूप नहीं है, वर्ण नहीं है, गंध नहीं है, स्पर्श नहीं है, फिर ऐसे बोलते धर्म अधर्म नहीं है, इस तरह से बोलते चले जाएं तो ये हमें पूरी भाषाएं बन जाएंगी। और फिर लेकिन क्योंकि ये अचेतन है, ये जानते नहीं है, एक जो हेतु दिया ना वो 15 बार दिया तो उसको हम एक दफे बोले बस, क्योंकि ये कुछ जानते नहीं है इसलिए ये अचेतन है, इसलिए ज्ञान भिन्न है और ये भिन्न है। तो ये सब वे के भेद हो गए और ये ज्ञान से भिन्न है। अब इतना गाथाओं में पद्यानुवाद में और गाथाओं में आ गया। अभी आत्मसाती टीका में भी कुछ नहीं है, उसमें भी बिल्कुल ऐसे ही लिखते गए हैं जो मैंने आपको मुंह से बोल दिया है ना, ऐसे ही ऐसा लिखते गए हैं। इसलिए मेरा मतलब यह है कि उनपे लंबा चौड़ा व्याख्यान करने से एक एक पर अपेक्षा को स्टाइल बता दें तो आपके ख्याल में वो सब बात आ जाएगी कि इतनी चीजें ये नहीं है। फिर जो अंतिम गाथाएं 2-3 है इस धंधा में, उनमें थोड़ा अंतर आया है जो आकाश ज्ञान ने फिर अध्यवसान मुगराज देश के परिणामों को ले लिया, क्योंकि अब जीव बचा था ना तो जीव में से उसके विकारी भागों को ले लिया। अब जीव जानता है, देखो अब जीव के 2 हिस्से किए ना, एक विकारी भाव और एक अविकारी भाव। तो जीव और जीव की निर्मल पर्याय तो वे कहते जीव ज्ञान है, इन चीजें तो ज्ञान नहीं है नहीं है कह रहे थे, और अब ये कहते जीव ज्ञान है क्योंकि वो जानता है, इसलिए ज्ञान और ज्ञायक भाव भिन्न नहीं है, एक ही है, ऐसा जिनेन्द्र भगवान कहते हैं। चल नहीं अंत में निष्कर्ष में इस बात में पहुंचा दिया, वर्दोषान भाव को भी अलग से क्यों ले दिया, क्योंकि वो तो नहीं है ना, उसे गे में डाल दिया, राजदेश में वो गे है बस। अब ये है जिन्होंने कहा कि ये जीव है, कौन जानता है, जानना और ज्ञान ये एक जीव है। तो फिर इन्होंने अंत में कह दी ज्ञान समदृष्टि संयम सूत्र पूर्व गतांग सद्धर्म अधर्म और दीक्षा, ये सब अपने आत्मा की निर्मल प्रणमन है, ये सब ज्ञान है, ये सब जीव की पर्याय है और ज्ञान है, इसलिए ये ज्ञान से भिन्न नहीं है, ये ज्ञान से अभिन्न है, ये बात इन्होंने यहां कही है। अभी तो एक दफे अपन टीका और पढ़ेंगे ना तो उससे अपनी बात बिल्कुल स्पष्ट दोहरा दी जाएगी। इतना जो समझाया है इससे आपके स्टाइल आपकी समझ में आ गई होगी। तो अब देखो एक ही स्टाइल में इस टीका लिखते गए हैं, जैसे कि अपन एक ही लाइन में लिखते जाते तो ये भी जंगल जैसा लगता, लेकिन इतना बनने पैरा हरेक का अलग अलग कर दिया ना तो वो बिल्कुल क्लियर हो गया कि शास्त्र ज्ञान नहीं है क्योंकि शास्त्र कुछ जानता नहीं है, ये तो इसका अब इसी का अर्थ है जो अपन ने बताया है अभी ये पढ़ा है। अब आचार्य अमृतचंद आत्मख्याति गाथाओं का भाव इस प्रकार स्पष्ट करते हैं, ये गाथाओं का अर्थ हो गया जो अपन ने पढ़ के अभी बताया है। ये श्रुत माने वचनात्मक द्रव्य श्रुत लेना, क्योंकि भाव श्रुत भाव ज्ञान को है ना श्रुत ज्ञान, उसको भी श्रुत बोलते हैं, इसलिए कोष्टक में लिखा है ना कि वचनात्मक द्रव्य श्रुत ज्ञान नहीं है क्योंकि श्रुत अचेतन है, इसलिए ज्ञान के और श्रुत के व्यतिरेक है, भिन्नता है। शब्द ज्ञान नहीं है क्योंकि शब्द अचेतन है, इसलिए ज्ञान के व शब्द के व्यतिरेक माने भिन्नता है। रूप ज्ञान नहीं है क्योंकि रूप अचेतन है, इसलिए ज्ञान के और रूप के व्यतिरेक माने भिन्नता है। वर्ण ज्ञान नहीं है क्योंकि वर्ण अचेतन है, इसलिए ज्ञान के और वर्ण के व्यतिरेक माने भिन्नता है। गंध ज्ञान नहीं है क्योंकि गंध अचेतन है, इसलिए ज्ञान के और गंध के व्यतिरेक माने भिन्नता है। पर नहीं पढ़ना है इसमें क्योंकि बात तो सब स्पष्ट हो गई ना, मैंने आज ये क्यों नहीं लिया। اس لیے کہیں گے اس میں جنگل ہے، پھر وہ ان کا ان کا ان کا ان کا تو اس میں پھر وہ الجھ جاتے ہیں، اور جو مدے کی بات ہے اس سے ہمارا چت ہٹ جاتا ہے، سمجھے نا؟ پھر رس گیان نہیں ہے کیونکہ رس اچیتن ہے، اس لیے گیان کے اور رس کے وترک معنی بھنتا ہے۔ اسپرش گیان نہیں ہے کیونکہ اسپرش اچیتن ہے، اس لیے گیان کے اور اسپرش کے وترک معنی بھنتا ہے۔ کرم گیان نہیں ہے کیونکہ کرم اچیتن ہے، اس لیے گیان کے اور کرم کے وترک معنی بھنتا ہے۔ دھرم گیان نہیں ہے کیونکہ دھرم اچیتن ہے، اس لیے گیان کے اور دھرم کے وترک معنی بھنتا ہے۔ ادھرم گیان نہیں ہے کیونکہ ادھرم معنی ادھرم اچیتن ہے، اس لیے گیان کے اور ادھرم کے وترک معنی بھنتا ہے۔ اب اس میں کیا ہوتا ہے، دھرم ادھرم جب آتے ہیں تو وہاں دو طرح کی شنکا کھڑی ہو جاتی ہے، کیونکہ یہ دھرم ادھرم درب کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ دھرم ادھرم جو ہوتا ہے وہ پنیہ پاپ، پنیہ پاپ کو بھی ادھرم، پنیہ کو دھرم اور پاپ کو ادھرم کہتے ہیں، اور ایک اپنا بہت دھرم بھی ہوتا ہے نا، جی وتراگ بھاو دھرم پتاگ بھاو ادھرم۔ تو یہ اس کا نرنے کہ یہاں پر ہم کو پنیہ پاپ سے دھرم ادھرم سے درب لینا، کیونکہ آگے کال اور آکاش ہے، یعنی وہ کال اور آکاش آگے نہیں ہوتے تو ہم ان کو درب نہیں لے کے کچھ اور بھی لے سکتے تھے، ہے نا؟ کال گیان نہیں ہے کیونکہ کال اچیتن ہے، اس لیے گیان کے اور کال کے وترک بھنتا ہے۔ آکاش گیان نہیں ہے کیونکہ آکاش اچیتن ہے، اس لیے آکاش کے اور گیان کے وترک معنی بھنتا ہے۔ ادرسان گیان نہیں ہے کیونکہ ادرسان اچیتن ہے، اس لیے گیان کے اور ادرسان کے وترک معنی بھنتا ہے۔ ابھی یہاں تک آ گئے نا، اس پرکار گیان کا انیہ سرو پردربیوں کے ساتھ وترک نشچے نئے سادھت دیکھنا چاہیے۔ تاتپر یہ ہے کہ نشچے نئے سے وچار کریں تو گیان اور پردربیوں سے بھن ہی ہے۔ اب یہ کیا کہتے ہیں، اتنی باتیں جو ہم نے آپ سے کہیں یہ کتھن نشچے کا ہے، اسے ویوہار کا نہیں سمجھنا چاہیے۔ تو بھید کر کے کہہ رہے تو آپ ویوہار کر سکتے ہو، لیکن یہ واستوک ہے، یہ کتھن نشچے کا ہے، مانے واستوک ہے کہ یہ دونوں بھن ہیں، یہ واستوک ہے۔ دونوں کو جہاں ہم ابھن بتائیں گے اسے تم ویوہار کتھن سمجھنا، وہ واستوک نہیں ہے، سمجھنا؟ جہاں یہ بھن ہیں یہ کتھن واستوک ہے نا، شریر اور آتما بھن بھن ہے، یہ نشچے کا کتھن ہے نا، اور شریر اور آتما ایک ہی ہے تو وہ ویوہار کا کتھن ہے۔ تو اس طرح سے ہم نے 15 چیزیں جو گنائی ہیں وہ اس طرح سے گنا، دیکھیں اس پرکار گیان کا اور انیہ پردربیوں کے ساتھ وترک نشچے سادھت دیکھنا چاہیے۔ تاتپریہ یہ ہے کہ نشچے سے وچار کریں تو گیان پر پدارتھوں سے بھن ہی ہے۔ اب یہ نشچت کرتے ہیں کہ جیو ہی ایک گیان ہے، کیونکہ جیو چیتن ہے، اس لیے گیان کے اور جیو کے ابترک ہے، ابھید ہے۔ اس بات کی رنچ ماتر بھی آشنکا نہیں کرنا چاہیے کہ گیان اور جیو میں کنچت ماتر بھی وترک ہوگا، کیونکہ جیو سوئم ہی گیان ہے۔ اس پرکار گیان اور جیو کے ابھن ہونے سے گیان ہی سمیہ دشٹی، گیان ہی سنیم، گیان ہی انگ پور سوتر، اور گیان ہی دھرم ادھرم، یہاں پنیہ پاپ لیے ہے نا، اور گیان ہی پروجیا ہے۔ دیکھو یہاں کیا کہہ رہے ہیں کہ جیو اور جیو کی پریائیں، جو کی چیزیں گنائی نا انہیں وہ جیو کی نرمل پریائوں کی دشٹی سے ان کی بات کر رہے ہیں، کہ جو یہ جیو ہیں اتنی چیزیں جیو نہیں ہیں، تو یہ کیوں گنا رہے کہ یہ جیو ہیں؟ اس لیے گنا رہے کہ ہم نے گیان تو آتما ہے، اور یہ جتنے گے گنائے تھے وہ اکیلے گے تھے، گیان نہیں تھے، اور یہ چیزیں گیان بھی ہیں اور گے بھی ہیں۔ اپنا آتما یہ گیان بھی ہے اور گے بھی ہے، دونوں ہی ہیں نا۔ ان میں تو ہم نے کہہ دی کہ وہ گیان نہیں ہے، گیان نہیں، شبد گیان نہیں ہے، روپ گیان نہیں ہے، گندھ گیان نہیں ہے، اسپرش گیان نہیں ہے، धर्म देव ज्ञान नहीं है, अधर्म देव ज्ञान नहीं है, क्योंकि वो कुछ अचेतन है, वो जानता नहीं है कुछ, इसलिए उन्हें भिन्न भिन्न कहते हैं। अब हम ऐसे जीव और ज्ञान को नहीं कह सकते कि जीव ज्ञान नहीं है, क्योंकि जीव कुछ जानता नहीं, जीव तो जानता है और वो अचेतन नहीं है। तो ये सिद्ध करते हैं कि जो चेतन है और चेतन की पर्याय, मतलब समझे उनके द्रिगुण पर्याय, ये सब जीव हैं, ऐसा इन्हें भेद विज्ञान कराया। जितनी वो चीजें गिनाई वो सब अकेले गे हैं, और जीव गे भी है और ज्ञान भी है, तो गे भी होने से वही धुन में तुम उनको भी वैसे ही मत बोलते रहना क्या। इस तरह से अंतिम गाथाओं में उनने ये निष्कर्ष प्रस्तुत किया। इस प्रकार ज्ञान का जीव की पर्यायों के साथ अव्यतिरेक अभेद को भी निश्चय साधित देखना चाहिए। तात्पर्य यह है कि जीव पर्यायों का जीव के साथ अभेद से ही, अभेद भी निश्चय से है, ये भी निश्चय का कथन है। वो भेद रूप व्यवहार को यहाँ मत लेना, वास्तव में तो यहाँ पर असद्भूत व्यवहार को ही व्यवहार कह रहे हैं। वो जो सद्भूत व्यवहार है ना, भेद रूप व्यवहार, उसको कहते वो तो उसका है। सर हमने कह दिया जीव ज्ञान दो शब्द अलग अलग बोल दिए, आत्मा वो द्रव्य है, वो गुण है, तो उससे वो अलग नहीं हो जाता। वस्तुतः वास्तव में तो बात ऐसी होती है, जिनके प्रदेश भेद होता है वे अलग अलग होते हैं, और जिनके प्रदेश एक होते हैं वे एक एक होते हैं। तो जीव के और ज्ञान के प्रदेश एक हैं, जीव के और रूप के प्रदेश एक नहीं है, रस के प्रदेश एक नहीं है, गंध के प्रदेश एक नहीं है। इस प्रकार सर्व परद्रव्यों के साथ व्यतिरेक माने भिन्नता, और सर्व दर्शनादि जीव स्वभावों के साथ अव्यतिरेक के द्वारा अतिव्याप्ति और अव्याप्ति को दूर करते हुए, ये अतिव्याप्ति और अव्याप्ति क्या है और इसको दूर करते हुए दूर कैसे किया, थोड़ा ऐसे समझना पड़ेगा। ये लक्षण के दोष होते हैं, अतिव्याप्ति अव्याप्ति और असंभव। तो जो लक्षण पूरे लक्ष्य में पाया जाता है, पाया जाना चाहिए, यदि वो पूरे लक्ष्य में नहीं पाया जाता है तो उसे अव्याप्त है, वो उसे अव्याप्त दोष कहते हैं। जैसे अपन ने गाय की परिभाषा बनाई कि गले में जो लटकती झालर है ना, वो गाय है, तो वो झालर तो हर एक गाय में पाई जानी चाहिए, क्यों गाय लक्ष्य बना दिया हूं। यदि वो कुछ गायें ऐसी मिल जाएं कि जिनमें वो गाय नहीं हो तो फिर नहीं बनाया जा सकता, वो लक्षण अव्याप्त नाम के दोष से दूषित हो जाएगा, समझे ना। जीव का लक्षण उपयोग बनाया, यदि कुछ जीव ऐसे मिल जाए जिसमें ज्ञान दर्शन ही नहीं हो, उपयोग ही नहीं हो, पर जीव हों वो, तो ये लक्षण अव्याप्त हो जाएगा, समझे ना। तो जैसे कि जीव का लक्षण हमने उपयोग नहीं बना करके, और जो अनंत सुखी हों वो जीव है, तो सिद्धों में तो घटित होगा, अनंत में और लागी संसारों में नहीं घटित होगा है? तो मेरे मतलब इस तरह से उसे नहीं बनाया जा सकता है। सुख तो बनाया जा सकता है, सुख दुख मतलब, लेकिन वो अनंत सुख नहीं बनाया जा सकता। तो इसलिए कहते हैं कि अव्याप्त दोष तो इसलिए नहीं है, कौन सा, क्योंकि ये जीव और जीव की पर्यायों में, पर्याय माने गुण, गुण को पर्यायों को, दोनों को पर्याय कहते हैं, क्यों पर्याय छिक नय का जो विषय बनता है उसे पर्याय कहते हैं। तो वो भेद रूप है, और ये तो कहते जो जीव और जीव की पर्यायों में ज्ञान गुण व्याप्त है, इसलिए ये अव्याप्ति दोष से दूषित नहीं है, और आत्मा और आत्मा की पर्यायों को छोड़कर किसी दूसरे में जाता नहीं है, इसलिए अतिव्याप्ति दोष से दूषित नहीं है। जैसे हम जीव का लक्षण अमूर्तिक बना,
तो जीव सब जीवों में अमूर्ति पना तो है, इसलिए तो कोई गड़बड़ नहीं, अव्याप्ति दोष तो नहीं है, लेकिन पुद्गल को छोड़कर आकाश भी अमूर्ति है, काल भी अमूर्ति है, धर्मद्रव धर्मद्रव भी अमूर्ति है, तो ये अतिव्याप्त दोष से दूषित हो गया। तो बता रहे कि ज्ञान जो लक्षण है जीव का, वो न अतिव्याप्त दोष से दूषित है, न अव्याप्ति नाम के दोष से दूषित है। ये जो बात हम कह रहे हैं कि निश्चय से साधित करना चाहिए, इसलिए कह रहे हैं तो उसमें अतिव्याप्ति और अव्याप्ति नाम का दोष नहीं है। और एक तीसरा दोष होता है असंभव, कि जो जिसमें पाए ही नहीं जा रहा हम उसमें उसका लक्षण बना दें। अचेतन जीव का लक्षण बना दें, खुद का लक्षण चेतन बना दें, जो उसमें संभव ही नहीं है, जो असंभव बात हम कह दें तो असंभव नाम का दोष भी नहीं है। देखो कहां पढ़ रहे थे अपने, यहां यहां पढ़ रहे थे ना, अतिव्याप्ति और अव्याप्ति को दूर करते हुए अनादि विभ्रम के कारण होने वाले पुण्य पाप एवं शुभ शुभ रूप और धर्म धर्मात्मक रूप पर समय को दूर करके स्वयं ही निश्चय कारित रूप प्रबज्ञा को प्राप्त करके दर्शन ज्ञान चारित्र में स्थिति रूप स्वसमय को प्राप्त करके मोक्ष मार्ग को अपने में ही परिणत करके जिसने संपूर्ण विज्ञान हीन स्वभाव को प्राप्त किया है, ऐसे ग्रहण त्याग ग्रहण से रहित साक्षात समयसार भूत परमार्थ रूप एक शुद्ध ज्ञान को निश्चल देखना चाहिए, अर्थात प्रत्यक्ष स्वसंवेदन से निश्चल करके अनुभव करना चाहिए। ये हमने तंत्राचार्य ने अपनी तरह से किया कि हमने ये बातें इतनी बातें क्यों कही कि ये है, ये ज्ञान है, ज्ञान में हमने ये पर्यायें शामिल की, तो विकारी और अविकारी, तो विकारी पर्यायों को दूर करके अविकारी पर्यायों को प्रकट करके संयम लेकर दीक्षा लेकर के और फिर परम समय साधु भगवान आत्मा को हमें प्राप्त करना चाहिए। और ये निश्चल तो वो कहते हैं, यदि दोनों पर्याय हमने आपको बता तो दी कि जो प्राप्त करने लायक है संबंध ज्ञान चारित्र मोक्ष और छोड़ने लायक है वो भी बता दी, लेकिन इनसे भी इनके विकल्प से भी पार जो निर्विकल्प आत्मा है उसका अनुभव करना चाहिए तो ये दर्श प्राप्त होगी। तो इस तरह ये ज्ञान और ज्ञेय से भिन्नता वाली गाथाएं हैं। देखो अब इस पर जो अपने कमेंट्स हैं कि उक्त संपूर्ण विश्लेषण पर दृष्टिपात करने पर एक बात अत्यंत स्पष्ट रूप से उभर कर सामने आती है कि इन गाथाओं में उन सभी पर पदार्थों को ज्ञान स्वाभी आत्मा से भिन्न बताया गया है जो हैं तो गे पर जिन्हें भ्रम से ज्ञान समझ लिया जाता है। इतनी चीजें गिनाई, अब दुनिया में गे सिर्फ इतना ही तो नहीं है ना, क्या गे तो और अनंत है। जैसे मैंने कहा ये रूमाल है, लेकिन रूमाल को कोई जीव नहीं समझता है, तो उन्हें नहीं, वो कहते हमने उतनी चीजें ही गिनाई हैं जिनको धोखे से वो जीव नहीं है और जीव समझ लिया जाता है। वो ज्ञान नहीं है और जीव समझ लेने का मतलब ज्ञान समझ लेना है, ख्याल है ना। फिर लेकिन उतनी चीजें ही पर पदार्थों को ज्ञान स्वाभावी आत्मा से भिन्न बताया गया है कि जो ये तो है उसके जानने में तो आए, पर जिन्हें भ्रम से ज्ञान समझ लिया जाता था उन चीजों को गिनाई, जिनको समझते ही नहीं है उनको हमने नहीं गिनाया। पिछली गाथाओं में शुभाशुभ क्रियाओं और शुभाशुभ भावों के कर्तृत्व भोक्तृत्व का निषेध किया गया था। वे कौन सी, एक चार का ग्रुप, फिर तीन गाथाओं का ग्रुप, उसमें कर्म चेतना और कर्मफल चेतना उनका निषेध किया था ना, और जिसमें फिर वो 147 बोल और 148 बोल के माध्यम से अपने ज्ञान को नचाया, ज्ञान का नृत्य कराया था। अब ये बाद में उसमें कहते हैं
कि जो गे हैं तो इतना संबंध तो है, इतना संबंध तो है। अभी अपने पहले तो लोग में ऐसा था गांव में कि हम एक दूसरे को नहीं जानते थे, और वे अभी आपस में मिलते थे तो भी आपस में भी राम राम जय जनेन्द्र करते थे। मतलब आज ऐसा खत्म हो गया, वो जो कोई किसी को नहीं जानता है तो फिर वो उससे नहीं करता, नमस्ते जय जनेन्द्र नहीं करता। ये बिल्कुल स्पष्ट अनुभव मैं अपने आंखों से मैंने देखा है कि जैसे हम अपने गांव से रेलवे स्टेशन जाते थे 7 मील है, तो उस रास्ते में जितना भी व्यक्ति मिलते थे तो वे हमको नमस्ते करते थे, हम उन्हें नमस्ते करते थे, लेकिन एक दूसरे को बिल्कुल जानते नहीं थे। लेकिन मतलब यह है कि पूरे 6-7 मील के रास्ते में 2-4 आदमी ही मिलते थे, रास्ता बिल्कुल सूना रहता था। अब तो कितनी भीड़ बढ़ गई जैसे, और अब तो हम इतनी भीड़ हो गई यदि हमें हर ऐसे मिलने वाले से नमस्ते करने लग जाए तो 24 घंटे नमस्ते ही नमस्ते नमस्ते ही चलता रहेगा। चल रहा है ना, तो जब मैं इसका उदाहरण देता हूं ना कि रास्ते में एक आदमी मिला और उसने हमें नमस्ते किया और हमने बहुत प्रेम से जवाब दिया और पूछा अच्छे तो हो ना, ठीक है तो आप हमसे पूछते कौन है, तो मैं ये कहूं कि मैं नहीं जानता कौन है, हम नहीं मानते, उसने इतना प्रेम से आपसे नमस्ते किया, आपने नमस्ते किया, आपकी कुशल क्षेम पूछी, तो ये ऐसा नहीं हो सकता। जो उदाहरण मतलब आज का काम का है वो पुराने जमाने का नहीं, कोई नहीं पूछता था कि तुम इसे जानते नहीं हो तो नमस्ते क्यों किया, समझ गया। तो वो कहता है कि भाई साहब अभी हम रेल में आए थे तो 12 घंटा आमने सामने की सीट पे बैठे रहे, तो हम इन्हें देखते रहे, वही हमें देखते रहे, क्या करते हैं, अब ये सामने वाली सीट पे ये अकेले थे, इस सीट पे हम अकेले थे, बहुत एक सीट रिजर्व होती है ना, तो आमने सामने दोनों पे एक ही एक तो होंगे या नहीं, तो क्या देखेंगे, तो एक दूसरे को देखते रहे बस, पर ये हमारा इनसे ये रिश्ता है, तो वो हंसते हैं पागलपन की बात करते हो, ये नहीं मानते, मानने एक दूसरे को जानते देखते रहे, इसको जगत में भी कोई रिश्ता नहीं माना जाता है। लेकिन ये रिश्ता बन गया ना कि, और दूसरा क्या कारण है हमारा नमस्ते करने का, यदि वो रेल में सामने नहीं बैठे होते एक आध बात भी कर ली होगी, क्योंकि बैठे चुप चुप बैठे कब तक बैठे रहे, पूछ लिया होगा अच्छा बादल तो आजकल बादल हो रहे, सर्दी तो बहुत पड़ गई, ऐसी दस की बात है जिसके कुछ नहीं, क्या क्या कुछ बोलना तो चाहिए, कुछ बोलना तो चाहिए, कांग्रेस जीतेगी कुछ भी, अपन को कुछ रहना करनी है, कांग्रेस जीते भारतीय जनता पार्टी जीते, जिनमें जीतना हो जीते, नहीं जीतना नहीं कुछ मतलब नहीं है, लेकिन अभी क्या करे क्यों, तो इसके लिए हम कुछ शब्द बोल भी लिए हों बिना कुछ उत्तर की अपेक्षा के, यदि उत्तर देगा ही कि देना ही चाहिए ऐसा कुछ नहीं है, तो उतने को हम ज्ञान और ये संबंध नहीं मानते ना, तो ऐसे ही कहते हैं कि ज्ञान ने इन्हें जाना और एक ज्ञान के जानने में आए, पर इतना संबंध है और इससे आगे नहीं है, और इतना तो है। अब हम कहते हैं कि आगे नहीं है तो इतने संबंध से भी हम इनकार कर देते हैं, और इतने संबंध की हम स्थापना करते हैं तो वो बहुत संबंध जोड़ लेता है। दिक्कत समझ में आई ना, भेद विज्ञान की ये सबसे बड़ी दिक्कत है, आखिर आचार्य ने इतनी इतनी दफे इतना रिपीट किया, आपको दोहराया और बार बार वही वही बात कह रहे हैं, तो ये पागल थोड़े हो गए, हमको भी इतना रिपीट कर रहे तो वो ऐसा कर, हम यदि वो पढ़ते हैं ना हटाइए, तो इतने में आपको क्या कह दी पढ़ते जा रहे, हमने तो ऐसा कभी देखा ही नहीं, हमने जी पढ़ते भी समझाते हैं पढ़ते ही जा रहे, और हम ऐसा देख सोचते हैं और तुम ऐसा सोचते हो, हम सोचते हैं ये क्या सोच रहे होंगे, कुछ तो बोलो ऊपर को चेहरा करके पढ़ते ही जाएंगे, ऐसा नहीं होता है, उसने ऐसा होता है फीका हुआ जा रहा है, जबकि भाई असली सार आज ही आ रहा है। मेरे ख्याल में है ना बात, जब ये पाठ होता है ना शुरू में, और ये सब लेट आते हैं लड़के, कोई पाठ में नहीं आते हैं, तो मैं सुबह देखता हूं तो क्योंकि मैं सुनता हूं तो सबको मालूम है ये सुनेंगे, तो हॉल में दो लड़के आकर के और दो बोलते हैं और कोई नहीं होता, क्यों तो दादा सुन रहे होंगे। अब दादा को क्या पता अपने घर में है कि कोई है कि नहीं है, कि जय स्पीकर में बोल रहे हैं। हम कभी कभी यहां घूमने आते हैं तो वहां से देख लेते कि दो ही जने खड़े ऐसा होता है। मतलब मेरे कहने का कि हमारे जगत को उसको आप इतना निरर्थक समझते हैं, मैं इसलिए बताना चाहता हूं आपको कि ये कुंड कुंड की मूल वाणी बात है, तो हमारी बात ज्यादा वजनदार है कि कुंड कुंड की। जब हम पढ़ रहे होते हैं तो प्योर कुंद कुंद की बात आप सुन रहे होते हैं, और जब हम ऐसा समझा रहे होते हैं तो उसमें कुछ हमारी उदाहरण वगैरह भी होते हैं ना, मेरे कहने का मतलब, तो ज्यादा महत्वपूर्ण कौन है। प्योर आपको कुंद कुंद की बात सुनने को मिले वो ज्यादा महत्वपूर्ण है कि अकेली, वो तो हमारी समझ में नहीं आता तो समझाने के लिए बोलना पड़े, बोलिए का अलग बात है, लेकिन दादा बोलते रहे हमारे कुछ भी गप्पे लगाते रहे उदाहरण देते रहे और उतना हमने कुंद कुंद के समय को काट दिया। अब अपना मान लो समय इतना कीमती है तो जब समझ में आ गया इस पर इतना समझा दिया गया तो अब उसे ज्यादा उदाहरणों में उलझने की क्या जरूरत है, लेकिन जो आवश्यक है वो तो समझाने की जरूरत रही क्योंकि वो समझ में आएगा नहीं उसके बिना। अब एक बात फिर आप ये कहते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है कि बार 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 वही करते रहे, कुंद कुंद की तो है तो कुंद कुंद से तक हमने 100 दफे पढ़ लिया, फिर याद भी हो गया, फिर सुबह से उसके उसे बोले ऐसा लगता ना, फिर दूसरा दोष लगता है कौन सा, पहला तो हमें समझ में नहीं आएगी कुंद कुंद की वाणी है, लेकिन भाई साहब वो कुंद उन्होंने एकदम कस के और एक सार रूप में सुगठित कर दी है, तो वो चीज हमारे ज्ञान में निरंतर घूमे इसके लिए वो जरूरी है। इसने कहा भावना ज्ञान की भावना को नचाओ, ये 12 भावना रोज पढ़ो, कि वो उस वो चीज वो है जिसको आपको बार बार पढ़ने को बोलते हैं कि जिसकी भावना को नचाना है, नचाना है माने हमारे उपयोग में वो निरंतर बनी रहे। अब हम कोई भी चीज जो एक दफे पढ़कर जानने की थी उसको तो नचाते रहते हैं, और जो चीज बार बार जानने की है निरंतर उसको एक दफे पढ़ तो लिया हमने साहब। अरे पद्म पुराण एक दफे पढ़ने की चीज है और समय साल रोजाना पढ़ने की चीज है। अब हमारे फिर पद्म पुराण खत्म हो गया तो फिर पद्म पुराण शुरू कर दिया, फिर पद्म पुराण शुरू कर दिया है? वो उनके यहां ऐसा है कि राम की कथा करना ही धर्म है, पर उसे रिपीट करते रहो आप बस कदम क्या। वो कहते राम की कथा कर रहे बस वही स्वाध्याय है, वही कथन है, तो वो अपने यहां नहीं है। अपन को तो राम की कहानी जानना है, है? अभी दशरथ उनके पिताजी का नाम था, बस अब जान लिया वो याद हो गया, वो याद है, अब जरूरत नहीं है एरोजीना उसे दोहराते रहो। लेकिन आत्मा शरीर भिन्न है और आत्मा भिन्न है, कि नमोकार मंत्र जैसा जपने की बात है, तो इसलिए मैं कहता हूं कि वो जो पाठ आप पढ़ते हो उसको तुम उतना ही महत्व दो, माने हाजिरी वहां से गिनी जानी चाहिए। अभी तुम्हारी क्लास में ऐसा होता है ना, पहले दुनिया में हमेशा हाजिरी पहले होती थी और फिर क्लास शुरू होती थी, ऐसा ही होता था। अब हाजिरी अंत में होने लगी, और क्लास पहले और हाजिरी अंत में क्यों साथ बनती थी, क्यों हिसाब हो तो शुरू में तो आधे ही थी आते, और हाजिरी अंत में होगी तो अंत में पहुंच जाएंगे 5 मिनट को।
ये जो सब विवेक की बात है, मेरे कहने का मतलब ये है कि उसको आप निरर्थक नहीं समझो। अब उसमें आपके 1 मिनट कभी हो जाए लेते पर हम नहीं पहुंच पाए तो वो माफ के काबिल अपराध है, लेकिन अपराध है वो, निरपराध दशा नहीं है। क्योंकि जब वो उनकी दिव्य वाणी शुरू होगी कुंदकुंदाचार्य देव की, तब उसकी मर्यादा में हमें पहले से उपस्थित रहना चाहिए। मैंने कह दिया कि अध्यापक ने कि मैं क्लास में जब तक नहीं पहुंचू तब तक आप इसका पाठ करना, तो उसका अर्थ ही यह है कि तुम उस दिव्य वाणी का मूल का पठन करना, तब तक तो यहां उस एक दो तुम गप्पों से बच जाओगे आप उस बेकार की बातें करने से, और वहां व्यवस्थित रूप से जिस विषय वस्तु को हम तुम्हें समझाएंगे वो वस्तु तुम्हारी रिपीटिशन में आ जाएगी, वो वस्तु तुम्हारे रिपीटिशन में आ जाएगी। कि इसलिए वो चीजें बहुत अच्छी चीजें हैं, उनकी महिमा हमारे ख्याल में आनी चाहिए और उसी हिसाब से हम उनको उसमें वो करना चाहिए। देखो अब देखिए अपना हो गया ये पूरा, अब ये कलश अपन कल पढ़ेंगे के हो गया ना, आज का समय तो हो गया, कलश पढ़ने थोड़ा रह गया शायद बाकी। देखो ये जो पर पदार्थ जानने में आते हैं तो इनको जानना भी आत्मा के सहज स्वभाव का ही सहज परिणमन है। देखो मिला ऊपर से ही पढ़ते हैं, पिछली गाथाओं में शुभाशुभ क्रियाओं शुभाशुभ भावों के कर्तृत्व भोक्तृत्व का निषेध किया गया है, और यहां इन गाथाओं में गे पदार्थों से एकत्व ममत्व का निषेध किया जा रहा है। अब शुरू में समय सार में क्या शुरू किया था, एकत्व ममत्व और कर्तृत्व भोक्तृत्व, जीवा जीव अधिकार में एकत्व ममत्व का निषेध किया था और कर्ता कर्म अधिकार में कर्तृत्व भोक्तृत्व का निषेध किया था। अब उसी को यहां ले आए, देखो शास्त्र शब्द रूप वर्ण गंध रस स्पर्श कर्म धर्म अधर्म काल आकाश और अर्धवसान, इन सभी में ज्ञानत्व का निषेध किया गया है, और ये सभी आत्मा के गेय हैं, इनसे आत्मा का गेय ज्ञायक संबंध के अलावा कोई संबंध नहीं है। फिर भी अज्ञानी जन इनमें अपनापन स्थापित कर लेते हैं, किंतु ज्ञानी जन यह भली भांति जानते हैं कि इनसे आत्मा का कोई संबंध नहीं है। ये निष्कर्ष देखो 3 लाइन में पूरे इतनी गाथाओं का 15 गाथाओं का टीका का प्रधानवाद का सब निष्कर्ष आ गया कि नहीं, ये हमारे दिमाग में रहना चाहिए थोड़ी चिंता, और ऐसे ही नहीं रहना चाहिए कि रहते ही रट लो इसको, जब हम जब चाहें तब फैला दें, हम हमारे ज्ञान में समझ में आ गया होगा ना, तो इन 3 लाइनों को हम पूरा का पूरा इसको फैला दें। जो ये परपदार्थ जानने में आते हैं सो इनको जानना भी आत्मा का सहज स्वभाव का ही सहज परिणमन है, माने ये कोई टेंशन का काम नहीं है, ये कोई गलती नहीं हो गई है, जानना गलती नहीं हुई है। इन गाथाओं में से किसी भी रूप में यह ध्वनि नहीं निकलती है कि आत्मा इन्हें जानता ही नहीं है, या इन्हें जानना आत्मा का स्वभाव नहीं है, व्यवहार है, अपराध है। माने एक कहीं से नहीं निकलता है कि हमने जान लिया तो बहुत बड़ी गलती करी है, समझे। दूसरी बात ध्यान देने योग्य है कि अंतिम गाथा में सम्यक दर्शन अंग पूर्वगत सूत्र क्या होता है, ये 12 अंग है ना, और 12वां जो अंग है उसमें 14 पूरब हैं, वो 14 पूरब एक एक पूरब इतना बड़ा है कि जिसमें 11 अंग समाहित हो जाएं, इसलिए कभी कभी 11 अंग और 14 पूर्व ऐसा बोल देती है, उसका स्पष्ट उल्लेख क्यों करते हैं, वो बहुत बड़े हैं, और ये इसके बाद वो और चाव होती है और चूलका वगैरह तो उनको भी गुण ही कर देते हैं, वो पूर्व ही सबसे ज्यादा मुख्य है। ये पूर्व क्या है, कहते पूरब से चले आए, पूरब माने कलकत्ता तरफ से,
बाप दादों के जमाने से, भगवान महावीर से, आदिनाथ से ये बात चली आई, समझे ना, इसलिए इनका नाम है पूर्व, समझे, पूर्वगत। और आगम क्यों बोलते हैं इसे, क्योंकि ये चली आई, पूर्व माने पूर्व से, पहले से, और आगम माने चली आई, इसलिए इन्हें आगम भी बोलते हैं, पूर्वगत भी बोलते हैं, श्रुत भी बोलते हैं, क्योंकि सुन के समझी जाती है, श्रोतेन्द्रिय का विषय बनती है, और द्वादश अंग वाणी रूप श्रुत के जो भेद कहे जाते हैं ना, ऐसे इनके कारण है। देखो दूसरी बात ध्यान देने योग्य है कि अंतिम गाथा में सम्मा दर्शन अंग पूर्वगत सूत्र, सूत्र माने जिन सूत्रों में 14 अंग, 12 अंग और 11 पूर्वांग, 14 पूर्वांग इनका वर्णन है, उसको परिभाषित किया है, संयम धर्म अधर्म मान ये परिणामों से संबंध है, और प्रविद्या दीक्षा को आत्मा से अनन्य और आत्मा ही कहा गया है। अब गजब की बात तो यह है कि परद्रव्यों से भिन्नता और निरपरिणामों से अभिन्नता, इन दोनों को ही निश्चय साधित कहकर निश्चय नय का कथन बताया गया है। ये जो पूरा निष्कर्ष अपन ने लिखा ना, तीन लाइन पिछले पेज पर बाकी के सब, तो इसका ही निष्कर्ष है। यदि आप इसे शांति से पढ़ेंगे तो पूरी चीजें इसमें आ गई, कुछ भी छूटा नहीं है एक अक्षर, तो फिर इसमें और ज्यादा क्या है, इसमें तो और विद्वानों ने क्या कहा है वो कोटेशन दे दिए हैं, लेकिन वो जो और विद्वानों ने कहा है वो भी इससे ज्यादा कुछ नहीं कहा है, समझे। इन्हीं के आधार पर अर्थात सर्व परद्रव्यों से वितरेक और सर्व दर्शनादि जीव स्वभावों से अवितरेक, अवितरेक माने अभिन्न और वितरेक माने भिन्नता के द्वारा अतिव्याप्ति और अव्याप्ति दोषों से रहित बना सिद्ध करके निश्चल अनुभव करने की प्रेरणा दी गई है। मूल बात यह है कि इस संपूर्ण प्रकरण में परज्ञेयों से भिन्नता की बात ही मुख्य है, उन्हें आत्मा जानता ही नहीं है, यह बात बिल्कुल ही नहीं है। ये गाथाएं भी वो लोग बड़े गौरव के साथ पेश करते हैं, देखो कितना क्लियर लिखा है, शब्द ज्ञान नहीं है क्योंकि शब्द कुछ जाने नहीं, शास्त्र ज्ञान नहीं है क्योंकि शास्त्र कुछ जाने नहीं, वो कहते शास्त्र को अपमान कर रही, शास्त्र कुछ जानता नहीं है, शास्त्र का अपमान, अरे ये तो ज्ञान और गेय की भिन्नता की बात कही है, आप समझे ना कि गेय पदार्थ है, आत्मा उन्हें जानता है, उन्हें जानना नहीं चाहिए, ये कहां लिखा है, इसमें से ध्वनि निकलती ही नहीं। अभी क्या है, न तो प्राकृत कोई समझता है, न संस्कृत समझता है, और हिंदी भी कितने समझते हैं, मुझे तो बहुत शक होता है, मजाक नहीं कर रहा हूं, क्यों कि ऐसा जी मेरे हिसाब से इससे ज्यादा और सरल और स्पष्ट नहीं हो सकता है, फिर इसको भी पढ़ के समझ में नहीं आता, तो फिर भी हिंदी जानते हैं कि कैसे समझ में माना, ऐसे पढ़ लेने का नाम जानना थोड़ी है, तो उसका भाव हमारे ख्याल में आना चाहिए ना। अब इसी भाव का पोषक कलश का अपन कल करेंगे, 235वां छंद अपन कल पढ़ेंगे, और उसमें भी यही बात आने वाली है।